निर्गमन अध्याय 3। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिदान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। वो उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। निर्गमन 3:1। अब इसमें कोई शंका नहीं कि जंगल में मूसा के अनुभव उसके लिए अति आवश्यक थे। उसका पहला अनुभव था कि वो क्षेत्र के भूगोल को सीखे। सीनाई के रेगिस्तान और होरेब पर्वत पर भेड़ बकरियां चराते समय मूसा उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति से परिचित हो चुका था। वो ये भी जान गया था कि उस क्षेत्र में कुएं किस किस स्थान में थे। उसे वहां मौसम की जानकारी हो चुकी थी। उसे जंगल में जीवित रहने के लिए पर्याप्त अनुभव मिल चुके थे। परमेश्वर की प्रजा को मिस्र देश से निकालकर प्रतिज्ञा के देश में लाने के लिए उसके ये अनुभव बड़े लाभ के सिद्ध होने वाले थे। अतः वो अनुभवों की पाठशाला में प्रशिक्षण ले रहा था जंगल में जीवित रहने के लिए। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिरकर इस बड़े आश्चर्य कर्म को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता था, अपने मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वंश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हिती, एमोरी, पिरजी, हिबी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। निर्गमन 3:2-8। इस प्रकार परमेश्वर मूसा से जलती झाड़ी के बीच में से बोलना आरंभ करता है। सबसे पहले तो वो उसे चेतावनी देता है कि झाड़ी के पास ना आना। फिर उससे कहता है कि अपनी जूतियां उतार, क्योंकि तू पवित्र भूमि पर खड़ा है। फिर परमेश्वर अपने बारे में घोषणा करता है, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, इब्राहिम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। तब परमेश्वर ने घोषणा की, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित लगाया है। इब्रानी में चित लगाने का अर्थ है ध्यान से देखना। निश्चय ही मैंने देखा है, जानने के लिए मैंने पक्की तौर से जान लिया है, सुनने के लिए मैंने निश्चय पूर्वक सुना है। इब्रानी में इसे स्पष्ट कहा गया है। परमेश्वर उस तथ्य की घोषणा करता है जिसे उसने देखा, जिसे उसने सुना और जिसे उसने जाना है। ये परमेश्वर की विशेषताएं हैं जिन पर नए नियम में मसीह यीशु द्वारा जोर दिया गया है। तुम्हारा पिता देखता है, तुम्हारा पिता सुनता है, तुम्हारा पिता जानता है। ये परमेश्वर के गुण हैं जिन्हें अविश्वासियों द्वारा हमेशा चुनौती दी जाती है। क्या परम प्रधान में कोई ज्ञान है? परमेश्वर कैसे जानता है? वे सोचते हैं कि वे परमेश्वर से छिप सकते हैं। वे प्रार्थना के विचार का मखौल उड़ाते हैं। तो भी यीशु मसीह ने इन गुणों पर बार बार जोर दिया है, आपका पिता कैसे आपको प्रेम करता है और उसके कान आपकी दुहाई के प्रति खुले रहते हैं, वो कैसे देखता, वो कैसे सुनता, वो कैसे जानता है, ये इससे भी कहीं बढ़कर है। मैं तुझे छुड़ाने आया हूं। परमेश्वर बस यूं ही देखकर ये नहीं कहता, ओह ये कैसी भयंकर परिस्थिति है, वो दुहाई को सुनकर ये नहीं कहता, ओह क्या ही शर्म की बात है, वो इसके बारे में कुछ करता है। कभी कभी हमारे मित्र हमारे प्रति बड़ी सहानुभूति दिखाते हैं, वे देखते, वे सुनते, वे कहते, अरे बाप रे क्या ही शर्म की बात है, ये तो बहुत बुरा है, ये सच में भयानक है। शुक्र है प्रभु कहता है, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वंश से छुड़ाऊं। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वंश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हिती, एमोरी, पिर्जी, हिबी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। सो अब सुन, इसराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। निर्गमन 3:8-9 आप में से बहुत से लोगों ने दमन और अत्याचार सहा है, आपके विरुद्ध झूठ बोला गया, आपको तिरस्कृत किया गया, आपको चोट पहुंचाई गई। आप सोचते हैं कोई नहीं जानता कि मैं कैसी दशा से गुजर रहा हूं, कोई नहीं जानता कि मैं क्या सह रहा हूं, कोई है जो सब जानता है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इसराइल प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इसराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। निर्गमन 3:10-11 40 वर्ष पूर्व मूसा ने ये काम अपनी ताकत के बल पर करने का प्रयास किया था, वो अपने ढंग से इसे करने लगा था। निश्चय ही वे मेरे कार्य को समझेंगे, परंतु उसका अनुभव उसे निराशा के चरम बिंदु पर ले आया था और अब जंगल में 40 वर्षों का अनुभव उसे अति नम्र व्यक्ति बना देता है। आपको याद है मूसा लेवी के गोत्र से था, आपको लेवियों के बारे में की गई याकूब की भविष्यवाणी याद होगी, उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार हैं, धिक्कार उनके कोप को और उनके रोष को। उत्पत्ति 49:5-7 लेवी तेज स्वभाव वाला गोत्र था और मूसा में भी यही गरम मिजाज था, उसमें लेवी रक्त जो था, मिस्री पर तुरंत आग बबूला हो उठा था और उसे मार डाला था। अब 40 साल बाद वो रोष की आग जाती रही, अब वो क्रोध करने वाला पुरुष ना रहा था कि तुरंत युद्ध के लिए निकल पड़े। सत्य तो ये है कि अब वो एक दीन मनुष्य बन चुका था। जब परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इसराइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए, उसने कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इसराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं, मैं कौन हूँ। निर्गमन 3:11 ये एक रोचक प्रश्न है। मेरे विचार में वो प्रत्येक जन जिसने परमेश्वर की बुलाहट को सुना है संभवतः यही एक प्रश्न पूछता है, हे प्रभु मैं कौन हूं कि इसे मैं ही करूं। मैं सोचता हूं कि ये महत्वपूर्ण है कि हमें हमारी अयोग्यता का एहसास होता है। जब परमेश्वर हमें अपने कार्य को करने के लिए साधन बनाता है, मेरे विचार में परमेश्वर द्वारा मूसा को इस स्थान पर लाना आवश्यक था, परंतु मूसा दीनता में एक कदम और आगे बढ़ जाता है और कहता है, मैं कौन हूं। परमेश्वर ने कहा, निश्चय ही मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं तेरे लिए یہ چن ہوگا کہ جب تو ان لوگوں کو مصر سے نکال چکے تب تم اسی پہاڑ پر پرمیشور کی اپاسنا کرو گے۔ نرگمن تیسرا ادھیائے بارہویں پد۔ موسا اس سمے ہورے پروت پر تھا، جب تو انہیں مصر دیش سے نکال لے آئے گا تب تم ٹھیک اسی پروت پر میری آرادھنا کرو گے۔ یہی وہ پرمان ہوگا، یہی وہ ہورے پروت ہے جہاں موسا نے آگیائیں پراپت کی تھی۔ موسا نے پرمیشور سے کہا، جب میں اسرائیلیوں کے پاس جا کر ان سے کہوں تمہارے پتروں کے پرمیشور نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، یدی وہ مجھ سے پوچھے اس کا کیا نام ہے تب میں ان کو کیا بتاؤں؟ پرمیشور نے موسا سے کہا، میں جو ہوں سو ہوں۔ پھر اس نے کہا، تو اسرائیلیوں سے یہ کہنا جس کا نام میں ہوں ہے اسی نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ پھر پرمیشور نے موسا سے یہ بھی کہا، تو اسرائیلیوں سے یہ کہنا تمہارے پتروں کا پرمیشور ارتھات ابراہیم کا پرمیشور، اسحاق کا پرمیشور اور یعقوب کا پرمیشور یہوہ اسی نے مجھ کو تمہارے پاس بھیجا ہے، دیکھ صدا تک میرا نام یہی رہے گا اور پیڑھی پیڑھی میں میرا سمرن اسی سے ہوا کرے گا۔ نرگمن 3:13-15 پر۔ اب موسا نے کہا، میں کیا کہوں گا کہ کس نے مجھے بھیجا ہے؟ پرمیشور نے موسا سے کہا، میں جو ہوں سو ہوں۔ یہ واسطو میں موسا کے لیے پرمیشور دوارا کہا جا رہا تھا، کیونکہ پرمیشور موسا سے اپنے رشتے کی گھوشنا کر رہا ہے۔ میں ہوں، یہ میں کون ہوں؟ جو بھی تجھے آوشکتا پڑے اسی کی پورتی میں ہوں۔ پرمیشور کا نام وہ کریا ہے جو کام کا ہونا درشاتی ہے، کیونکہ پرمیشور آپ کے لیے صدا وہی ہونا چاہتا ہے جو آپ کی آوشکتا ہو۔ میں تمہاری شانتی ہوں، میں تمہارا بل ہوں، میں تمہاری سہایتا ہوں، میں تمہارا مارگ درشک ہوں، میں تمہاری دھارمکتا ہوں، میں تمہارا آدھار ہوں، میں تمہاری آشا ہوں۔ آپ کے جیون میں جو بھی آوشکتا ہوگی اسی کی پورتی پرمیشور ہے۔ یہ سچ کیسی من بھاون بات ہے۔ اسی کا ہو جانے کا ارتھ یہوہ ہے، کیونکہ وہ اپنی پرتیک آوشکتا کی پورتی بن جاتا ہے۔ پرمیشور نے موسا سے کہا کہ یدی وہ پوچھے تو اسرائیلیوں سے یہ کہنا تمہارے پتروں کا پرمیشور ارتھات ابراہیم کا پرمیشور، اسحاق کا پرمیشور اور یعقوب کا پرمیشور یہوہ اسی نے مجھ کو تمہارے پاس بھیجا ہے، دیکھ صدا تک میرا نام یہی رہے گا اور پیڑھی پیڑھی سے میرا سمرن اسی سے ہوا کرے گا۔ اس پرکار پرمیشور اپنی پرجا سے اپنا پریچے کراتا ہے، تمہارے پتروں کا پرمیشور یا تمہارے پتروں کا ارتھات ابراہم کا پرمیشور، اسحاق کا پرمیشور اور یعقوب کا پرمیشور یہوہ۔ اس لیے اب جا کر اسرائیلی پرنیوں کو اکٹھا کر اور ان سے کہہ کہ تمہارے پتروں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا پرمیشور یہوہ نے مجھے درشن دے کر یہ کہا ہے کہ میں نے تم پر اور تم سے جو برتاؤ مصر میں کیا جاتا ہے اس پر بھی چت لگایا ہے، اور میں نے ٹھان لیا ہے کہ تم کو مصر کے دکھوں میں سے نکال کر کنانی، ہتی، ایموری، پرزی، ہبی اور یبوسی لوگوں کے دیش میں لے چلوں گا، جو ایسا دیش ہے کہ جس میں دودھ اور مدھو کی دھارائیں بہتی ہیں۔ تب وہ تیری مانیں گے اور تو اسرائیلی پرنیوں کو سنگ لے کر مصر کے راجا کے پاس جا کر اسے یوں کہنا کہ عبریوں کے پرمیشور یہوہ سے ہم لوگوں کی بھیٹ ہوئی ہے، اس لیے اب ہم کو 3 دن کے مارگ پر جنگل میں جانے دیں کہ اپنے پرمیشور یہوہ کو بلیدان چڑھائیں۔ نرگمن 3:16-18 پر۔ اس پرکار عبریوں کے لیے یہ یہوہ پرمیشور ہے، ابراہیم کا پرمیشور، اسحاق کا پرمیشور، یعقوب کا پرمیشور۔ فرعون کے لیے وہ عبرانیوں کا پرمیشور یہوہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ مصر کا راجا تم کو جانے نہ دے گا، ورن بڑے بل سے دبائے جانے پر بھی جانے نہ دے گا، اس لیے میں ہاتھ بڑھا کر ان سب آشچرے کرموں سے जो मिस्र के बीच करूंगा उस देश को मारूंगा और उसके पश्चात वो तुमको जाने देगा। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा और जब तुम निकलोगे तब छूचे हाथ ना निकलोगे, वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन और उनके घर पाहुनी से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहनाना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। निर्गमन 3:19-22 पर इस प्रकार परमेश्वर कह रहा है कि उन्हें ये बातें सिखाओ कि वे मिस्रियों को कैसे लूटेंगे, परंतु वास्तव में देखा जाए तो वो मिस्रियों से अपनी मजदूरी वसूल करेंगे जिसके लिए मिस्रियों ने वर्षों तक उनसे गुलामी करवाई थी, जिसके बदले में उनको कुछ भी नहीं दिया। इस प्रकार इन तमाम वर्षों में गुलामी के दौरान उन्होंने मिस्र देश के लिए जो कुछ भी किया अब वे उसे इस रूप में वसूलेंगे। ये एक प्रकार से उनका उन तमाम वर्षों का वेतन होगा जिसे उन्होंने बेगारी कराए जाने के बदले पाया।